नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने बीते दो वर्षों में राजधानी शिमला में 66 भवनों को असुरक्षित घोषित किया है, जिनमें आवासीय भवनों के साथ सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। शिमला में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी दी। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास फिलहाल कर्मचारियों का स्टीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए आवास की अलॉटमेंट करने के लिए निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि शिमला में स्थित विधायक सदन मेट्रोपोलिस को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस भवन के मुरम्मत कार्य के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि असुरक्षित भवनों में रह रहे सभी कर्मचारियों को अगले दो महीनों के भीतर वैकल्पिक आवास उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार का धर्मशाला में प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि इस साल की 1 जनवरी से लागू होगी और इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों व 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
लास्ट आज का है, एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। दिस विल बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन द एंड द पेंशन।
नेहरू युवा केंद्र संगठन शिमला द्वारा ऐतिहासिक गेटी थिएटर में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है और उनकी ऊर्जा, विचार व नवाचार समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस यात्रा में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों को राष्ट्र के सक्रिय और सतर्क युवा के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया। इस राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में पहले दिन विभिन्न जिलों के 32 प्रतिभागियों ने भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा पर अपने विचार प्रस्तुत किए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्र द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता योजना के तहत मदद प्रदान की गई है। सांसद सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में सदन में उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य प्रासंगिक अवसंरचना के विकास के माध्यम से राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस आधुनिकी करण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता योजना के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान दी गई राशि का ब्यौरा भी सदन में रखा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ सभी से एकजुट होने का आह्वान किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार नशे के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और नशे की तस्करी व मादक पदार्थों के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने अब सख्त कानून बनाया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नशे जैसे विषय पर राजनीति करने के बजाय युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत है। कुल्लू जिला के बजौरा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 20,000 लीटर से अधिक दूध एकत्रित किया जाएगा। हिमाचल मिल्क फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,150 से अधिक दूध उत्पादन समितियां काम कर रही हैं, जिन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।